सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरा कर पकड़ के रखते हैं, इसलिए सब टेंशन होता है। अगर सब कुछ भगवान को सचमुच सौंपना आता है तो हमें इतने जीवन में इतनी टेंशन नहीं होता। एक छोटा बच्चा को कभी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है मेरे मम्मी पापा है ना। हम भगवान को खाली एक झूठा मोटा प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु सचमुच कोई सौंपता नहीं है। अगर सचमुच सौंपना सीख गया कोई तो उसका बड़ा पार, उसको कुछ भी समस्या नहीं होगी, कुछ भी तकलीफ नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है जीवन में। आज हम बहुत एक सुंदर विषय सुनेंगे जो सभी बीमारियों का कारण है। अगर वो ठीक हो जाए ना, देखना कितने बीमारियों से आप ठीक हो जाओगे। सुनेंगे सभी? सुनना चाहते हो? लेकिन उससे फिर मुक्त होने के लिए वायदा भी करना पड़ेगा, और वायदा करके उसको निभाना भी पड़ेगा, और रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा। अगर किसी का कारण समझ गए तो उसका कारण को निवारण करना भी सहज होना चाहिए, और निवारण है तो सहज करके दिखाना चाहिए। यहाँ डायबिटीज ऐसा नहीं है जो कोई झाड़ फूंक करके थोड़ा फूंक कर देगा, छू मंतर कर देगा, आपका सब डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आप ठीक होकर चले जाओगे यहाँ से। ऐसा नहीं है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी शिष्य विश्वविद्यालय में आप सबको विधि बताई जाती, फिर विधि अनुसार जो करेगा जीवन में वो सिद्धि प्राप्त करेगा, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो करेगा सो पाएगा। भगवान को अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में हर कोई पूरा एकदम क्या हो जाता। एक टीचर को कहोगे मुझे फर्स्ट डिवीजन पास करा दो, मुझे क्लास में टॉपर बना दो, क्या ऐसा तथास्तु करेगा जो हो जाएगा? टीचर पढ़ाता है, जो पढ़ता है उसी अनुसार फिर उसको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, एक संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो करेगा सो पाएगा। आपको जो बातें सिखाई जाती है ये सब जीवन में आप जितना अनुकरण करोगे उतना पाओगे, उतना फल मिलेगा। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सुना रहा हूँ, बहुत गंभीरता से सुनो और उसको प्रैक्टिकल में निभाओ, देखो फिर रिजल्ट, आप पूरा जादू जैसा रिजल्ट देखोगे। तो चले, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा एक सुंदर सौगात आपके लिए। एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है, बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। क्या आप सभी इसके लिए रेडी, तैयारी हो? इस सुनामी, ये राजस्थान में सुनामी कैसे आ रही है? ये लाइट ऑफ कर दो भाई जी, ये लाइट ऊपर, स्टेज लाइट ऑफ कर दो। तो समुन्द्र के किनारे में सुनामी आती है, ये राजस्थान तो मरुभूमि है, यहाँ कहाँ सुनामी आ रही है आप सोचते होंगे। लेकिन ये सुनामी हर जगह में, गांव गांव में, हर जगह में, हर शहर में आ रही है। ये कौन सी सुनामी जानते हो? एक बहुत साइलेंट सुनामी, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, शोरगुल नहीं, धीरे धीरे एकदम आ रहे। आपको कितने साल पहले, आज से लगभग 10-15 साल पहले एक सुनामी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी साउथ इंडिया में, हमारी पांडिचेरी में। एक श्रीमान अरविंदो का, उनका एक बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल है, वहाँ का एक स्टाफ आया था, वो बता रहा था। वो संडे का दिन था, समुंदर के किनारे में वो आई हॉस्पिटल है, बोला कि छुट्टी का दिन था, मैं ऊपर छत पे घूम रहा था, पहली बार देखा कि समुंदर पूरा 1.5-2 किलोमीटर पूरा एकदम पीछे हट गया। समुंदर एकदम 1.5-2 किलोमीटर पहली बार ऐसा देखा कि एकदम पीछे हट गया, तो सारे मछलियां तड़पने लगे ऐसे, सब एकदम फटफट फटफट कर रहे हैं, सब खाली हो गया पूरा बिल्कुल, पानी खिसक गया। तो जो कैवट जो पानी मछली पकड़ते हैं उनको तो बड़ा मौज हो गया, सब जाके पूरा परिवार बच्चे बच्चे सब जाके वो मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो पुलिस आके जोर से अनाउंस कर रहा है, भागो 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 भागो, अभी सुनामी आ रही, भागो, कोई सुन ही नहीं रहे। सब मछलियाँ एकदम बिना पानी एकदम छटपटा रहे हैं, तो सब पकड़ पकड़ी एकदम भर रहे हैं। तो पुलिस खूब जोर से आवाज़ कर रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। फिर थोड़े समय के बाद इतना जोर से समुंदर आया, एकदम सबको ले गया, पूरा सबको ले गया अंदर, कोई नहीं बच पाया। तो ये भी ऐसी एक सुनामी है जो बहुत एकदम स्लो सुनामी है, और ये सुनामी एक साइलेंट सुनामी और स्लो सुनामी, धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं चल रहा है किसी को। तो कौन सी सुनामी जानते हो, जानते हो कौन सी सुनामी? देख रहे हो, इतना मोटू स्विमिंग पूल में अगर जंप मार दे तो क्या होगा, क्या होगा? एकदम आधा पानी स्विमिंग पूल का बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सुनामी आ रही है, इट इज ए सुनामी ऑफ ओबेसिटी, ये मोटापा की सुनामी आ रही है। तो ये धीरे धीरे आ रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। आपको पता है दुनिया में बहुत बड़ी एक समस्या अभी कि हमारे देश में या सारी दुनिया में सभी मोटे होते जा रहे हैं, सबके लिए बहुत सुंदर सौगात। तो इट इज़ ए सुनामी ऑफ ओबेसिटी, इट इज़ ए ग्लोबल सुनामी। तो ये सुनामी ये दुनिया का सबसे नंबर वन हजार्ड है, हेल्थ हजार्ड है, स्वास्थ्य की सबसे बहुत बड़े खतरनाक समस्या है। देखो इतनी बड़ी लेडी वो वेइंग मशीन में खड़ी हो गई तो क्रैक हो गया, वजन मापने का मशीन में खड़ी हुई, मेरा वजन कितना देखने के लिए वो क्रैक हो गया मशीन, क्या देखेगी बेचारी। तो इट इज मोटापा एक बीमारी है, लोग समझते नहीं कि एक बीमारी है। अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या अभी है कि वहाँ 65% लोग मोटे हो गए हैं। हमारे भारत भी, हम क्यों पीछे रहे, भारत में भी हमारी माताएं सबसे ज़्यादा आगे नंबर ले रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल WHO से एक टीम आई थी, तो दिल्ली में वो चेक करके देख लिए कि देखा गया कि 60% माताएं मोटी हो गई है, ओवरवेट हो गई है। तो हमारे भारत में हम पीछे क्यों रहे हैं? ये देखो, चेन्नई में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, जो थानेदार है देखना, वो जो कांस्टेबल थानेदार के लिए, कांस्टेबल के लिए, पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसका छाती माप रहा है। तो जो जूनियर थानेदार है वो क्या कह रहा है सुनो, कहता है कि हे, तू अगर इंटरव्यू में फिट होना चाहता है तो मेरे बॉस जैसा हेल्दी बनना पड़ेगा, मेरे बॉस कैसा हेल्दी है ऐसा हेल्दी बनना पड़ेगा, मैं ना तेरा पेट भी ऐसा होना चाहिए तो ही तू फिट होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्ट होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्ट होगा। हमारे देश में एक मिसकंसेप्शन है, हेल्दी किसको कहते हैं? जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं बहुत मोटे मोटे लोग, तो मैं पूछता हूँ, भाई थोड़ा ध्यान तो रखो, कैसे देखो हालत हो गया है? कहते हैं डॉक्टर साहब अभी मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले तो और हेल्दी था, और हेल्दी था। मैंने जितना मोटू उतना हेल्दी है क्या? जितना कोई मोटू है उतना हेल्दी है क्या? मैं पूछता हूँ, आपके घर में आप जैसे, आपके माता पिता सभी ऐसे, भाई बहन ऐसे मोटे हैं क्या? हाँ, मेरे जैसा सब हेल्दी है, मेरे जैसा सब हेल्दी है। तो भारत में कोई मोटू हो गया तो उसको कहते हैं गुजराती में मोटा भाई, नहीं गुजराती में मोटा भाई मैंने बड़ा भाई उम्र में, जाड़ा भाई। तो कोई जाड़ा हो गया, जाड़ी हो गई, तो उसको लोग हेल्दी समझते हैं, वास्तव में वो हेल्दी नहीं है। टू बिकम ओबेस इज नॉट बिकमिंग हेल्दी। तो फिटनेस माना फिटनेस नहीं, फिटनेस जो फैट ज़्यादा चर्बी है उसको फिट नहीं कहा जाता, जो फिट है वो फैट नहीं, जो फैट है वो फिट नहीं। हमारे शरीर में ज़्यादा चर्बी जो हो जाती है ये बहुत बड़ी बीमारी है। आपको पता है अमेरिका में 60% से ज़्यादा लोग, रसिया में आधे से ज़्यादा लोग, और यूके में, जर्मनी में सब 50% से ज़्यादा लोग मोटे हो चुके हैं। तो इंडिया भी हम पीछे क्यों रहें, हमारे बच्चे भी इंडिया में 40% शहरी इलाका में जो बच्चे हैं, देखना इतने छोटे छोटे बच्चे गोल मोटोल, पूरा माँ बाप उसको खिला पिला के चब्बी चब्बी करके चॉकलेट आइसक्रीम खा खा के गोल मोटोल, तो 40% मोटे हो गए हैं। तो हम सभी भारत में जो भारतीय लोग हैं हम जल्दी मोटे हो जाते हैं, वी आर मोर प्रोन टू बिकम ओबेस, क्योंकि हम सब राजा महाराजा रहे हैं, काम करना इतना पसंद नहीं है। आप विदेश में जाओ देखना, सब काम लोग करते हैं, सब मेहनत करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो गया तो सेठ और सेठानी बन जाते हैं, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। बता रहा था अमेरिका में 20% लोग मोटे, बच्चे मोटे हो गए हैं, 65% बड़े बड़े मोटे हो गए हैं। अमेरिका में देखो कैसा हालत है, ये टीनेजर्स कन्याएं हैं, 13 साल से 19 साल के उम्र तक टीनेज कहा जाता है, 13 to 19 इज कॉल्ड टीनेज, टीन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 हो जाता है, और 13 से पहले 12 होता है, 13 to 19 इसको टीनेज कहा जाता है। इस उम्र में देखो कैसे फिट होना चाहिए, लेकिन देखो कितना 100 किलो से भी ज़्यादा। अमेरिका में कन्याएं भी ऐसी है तो वहाँ देखो कैसे हालत है, वहाँ एक एक आदमी 400 किलो 500 किलो का मिलेंगे आपको, एक मिनी हाथी है, एक एक हाथी जैसे हैं, सारा दिन खाली जंक फूड फास्ट फूड खाते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे, मोबाइल में काम करते रहेंगे, हिलने नहीं, डुलेंगे नहीं, तो क्या हाल होगा। माताएं बड़ी खुश हो रही है, वहाँ भाई लोग है ऐसे हैं, लेकिन भाई लोग देखो वहाँ माताएं भी ऐसी है, वहाँ माताएं भी ऐसी है तो कोई किसी से कम नहीं है, और वहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, देखो भीम जैसे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे देखो क्या हाल है, सब गोल मोटोल। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ वहाँ भी लोग और फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे हैं, सबके पास गाड़ी मोटर बंगला मोबाइल सबके पास है। जो भाई बहनों के पास मोबाइल है थोड़ा हाथ उठाओ, यहाँ लाए नहीं लेकिन है तो सही ना, जिनके पास मोबाइल है सबके पास होगा, मैं तो गलत सवाल पूछा, किसके पास दो दो है पूछना चाहिए, है ना, नहीं तो सबके पास मोबाइल है। आपको नहीं पता शायद, भारत में जितने मोबाइल है दुनिया में और किसी देश में इतना मोबाइल नहीं है। भारत में एप्पल मोबाइल जितना सेल होता है दुनिया में और कहीं कंट्री में सेल नहीं होता। तो हम भारत में ये थोड़े साल के अंदर इतने गाड़ी मोटर हैं गए, आप दिल्ली जाओ बॉम्बे जाओ जितने इंसान नहीं उससे ज़्यादा गाड़ी मोटर हैं कहीं भी जाओ। तो फिजिकल एक्टिविटी जीरो, टेंशन सबका जीवन टेंशन टेंशन टेंशन, जिसको टेंशन होता है ना वो सारा दिन खाली हाँ खाऊं हाँ खाऊं 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 करता रहता है, म्याऊ म्याऊ करता रहता है, खाऊं खाऊं करता रहता है, खाता रहता है, फिर मोटू हो जाता है। तो जिसको टेंशन जितना ज़्यादा वो मोटे होते हैं, तो इसलिए। और बच्चे सारा वीडियो गेम खेलते रहते हैं, सेलफोन गेम खेलते रहते हैं, फास्ट फूड जंक फूड खाते रहते हैं, फुटपाथ में जो बेचते रहते हैं वो हॉकर फूड खाते रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड इंस्टेंट फूड खाते रहते हैं, टीवी रिकमेंडेड फूड खाते रहते हैं, टीवी में दिखाएगा ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट, मम्मी मम्मी ये चाहिए ऑनलाइन मंगा दो, ये खाना है वो खाना है, तो खाते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं खाते रहते हैं, तो बच्चे क्या होंगे सोचो। तो इसी प्रकार देखो, ये 3 साल का एक बच्चा है, देखो 3 साल का बच्चा है कितना मोटू है, उसके देखो मोबाइल में बात कर रहा है, उसके आंखें भी खोल नहीं पा रहे हैं। 3 साल में कितना किलो जानते हो, 80 किलो, 80 किलो, देखो क्या हाल है आजकल के बच्चे, कैसा हालत हो रहा है। और ये हमारे भारत में भी कम थोड़ी है, हम वो विदेशी बच्चा है चाइना का, लेकिन भारत में भी हम कम नहीं है। ये राजस्थान का एक बच्चा है, अखबार में आया था इसका फोटो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत में भी हम कोई पीछे नहीं है, और भारत में हमारे बच्चे देखो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो पतले दुबले होने चाहिए, फिट होने चाहिए, कितने मोटे मोटे आप देख लो। तो स्कूल गोइंग बच्चे भी हमारे भारत के मोटे मोटे। टीनेजर देखो, हमारा इंडिया टुडे में फ्रंट कवर पेज में आया था, टीन एज में 13 to 19 एज में एकदम फिट होना चाहिए सभी, कितने चर्बी देखो, बिल्कुल खेल कूद नहीं, खाते रहते हैं, और देखो क्या हाल है। और हमारी माताएं भी पीछे क्यों रहे, कहते हैं हम भी कम थोड़ी हैं, देख लो माताएं भी सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, हिलना नहीं डुलना नहीं, मोटी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है हमारे पुलिसमैन, पुलिसमैन सबसे फिट होना चाहिए, लेकिन देखो क्या हाल है। किसने कहा ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं बोला दोनों बात तो कर रहे हैं लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो 1990 में हमारे टेलीविजन घर का कितना बड़ा बड़ा था, और हम लोग दुबले पतले थे, टेलीविजन तो एकदम बड़ा बड़ा बॉक्स जैसा था, हमारा रेडियो भी कितना बड़ा था। मैं बचपन में हमारे घर में एक मर्फी रेडियो था, ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा। तो पिताजी सवेरे सवेरे भजन लगा देते थे, तो भजन एक लेडी का आवाज़ सुनाई देता था, तो मैं इतना छोटू था, मैं मेरे पिताजी को पूछता था पापा ये कौन गा रहा है, तो कहते थे इसके अंदर एक लेडी बैठी है वो गाती है। तो मैं सच मान लिया था, बहुत साल तक सोच मान लिया था, इतना छोटा था मेरे अंदर कोई बैठी है, और तो इतने बड़े बड़े रेडियो का भी बक्सा होता था। और आज देखो हमारा टेलीविजन तो ऐसे पतला दुबला हो गया, और हम लोग मोटे हो गए। आपको पता है आप अगर खाली आपका शरीर का वजन 10 किलो ज्यादा होता है तो आपके हार्ट को एक दिन में 1000 लीटर से भी ज्यादा खून का पंप करना पड़ता है। खाली 10 किलो बढ़ जाता है तो 1000 लीटर, और 30 किलो बढ़ गया तो 3000 लीटर एक्स्ट्रा खून पंप करेगा, तो हार्ट को क्या हाल होगा आप सोच लो। इसलिए थोड़ा सा चलते हो तो सीढ़ी इतना चढ़ेंगे तो 10 किलो भी अगर ज्यादा बढ़ता है तो कितना डेंजरस है आप सोचो, हार्ट बेचारा को क्या होगा। तो हमारे भारत में 12 करोड़ लोग मोटे हो चुके हैं, 12 करोड़ ओवरवेट हो चुके हैं, और उसमें 30% शहरी इलाके में जो महिलाएं रहती है वही मोटे हो गए। गांव की महिलाएं अभी भी भाग दौड़ करके पानी कुआं से निकाल के खेती बाड़ी इधर उधर करके सब फिट रहती, लेकिन शहरों में माताएं बटन दबाओ ग्रर हो गया सब कुछ। तो शहरों में हमारी माताएं मोटी हो गई है, और हमारे बच्चे भी एकदम मोटे होने जा रहे हैं शहरी इलाका में। दिल्ली में 50% से भी ज़्यादा महिलाएं मोटी हो चुकी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सब हम सभी भाई लोग फिर भी ठीक है, फिर भी लगभग ठीक है, लेकिन बहनें माताएं सबसे ज़्यादा। तो बहुत जल्दी एक सुनामी हमारे भारत में आ रही है, कौन सी सुनामी, मोटापा की सुनामी। तो भारत बहुत, हम सभी बहुत सारे अभी तो लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास की भाई बहने भी मोटे होने लगे हैं। तो बाय 2020 तक ये अंदाजा लगाया गया था कि हम सभी अमेरिका से भी आगे चले जाएंगे। खुशखबरी है ना, खुशखबरी है। तो मोटापा एक बीमारी है, सीरियस बीमारी है, आप मत समझना हम तो खाने पीने वाले घर के हैं। लोग ऐसे ही समझते हैं ना, हम खाने पीने वाले घर के हैं इसलिए ऐसे हैं, लेकिन ओवरवेट हो जाना, शरीर में वजन बढ़ना, ये बीमारी की निशानी है, बहुत गंभीर बीमारी की निशानी। सुन रहे हो, कान खोल करके सुनो अच्छी तरह से। हमारे विकासवाद विज्ञान में इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, मनुष्य किससे पैदा हुआ है, कहते बंदर से। हमारे पूर्वज सब बंदर थे, बंदर से इंसान हो गया कहते हैं लोग, इतिहास में विज्ञान में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या सचमुच मनुष्य बंदर था, था बंदर, था बंदर? सबसे पुरानी भाषा कौन सी है बताओ, सबसे प्राचीन भाषा, उससे पहले कोई भाषा नहीं थी, ये संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से बाकी भाषा पैदा हुई है कहते हैं। संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना सहज है कि डिफिकल्ट है? आज भी हम संस्कृत को लिखना, पढ़ना, बोलना हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर हमारे पूर्वज सब संस्कृत बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, तो हमसे बुद्धिमान थे कि हमसे मूर्ख थे? हमसे बुद्धिमान थे ना। तो भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे पूर्वज कोई बंदर नहीं था। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का भी कॉन्फ्रेंस अमेरिका में, अभी 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी सब साइंटिस्ट आए थे। सभी ने सहमत हुए कि वास्तव में हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं था, बंदर से मनुष्य नहीं हुआ है। बंदर से मनुष्य होता तो बंदर अभी मर जाते, एक भी नहीं रहते, मनुष्य हो जाते सब। क्योंकि बंदर मनुष्य क्यों होगा, जब परिवेश का, वातावरण का, क्लाइमेट का उसको सहयोग नहीं मिलता है, चेंज होते हैं। जैसे कहते हैं, जे जीराफ देखे हो ना, तो जीराफ के गर्दन बहुत छोटे छोटे थे क्योंकि जमीन से वो घास खाते थे। लेकिन जैसे जैसे घास की कमी होने लगी, वो पेड़ से ऐसे पत्ता खाने के लिए प्रयास किए, धीरे 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 वो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ में कैसे खाएं, ऐसे मुंह ऐसे ऐसे करते खाते 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 गर्दन लंबा हो गया। जब सभी जिराफ का गर्दन लंबा हो गया तो जिसका गर्दन छोटा था वो जिंदा रहेगा क्या? वो तो मर ही जाएगा ना। तो कोई ये तो 2-4 दिन में ऐसा गर्दन लंबा नहीं हो जाता है, बहुत सालों लगता है। अगर हमारे पूर्वज बंदर थे और वो किसी भी कारण से परिवर्तन होके इंसान बन गए, तो आज कितने इंसान देख रहे हो, तो बंदर भी देख रहे हो, दोनों देख रहे हो। बंदर या तो मर जाना चाहिए सब। अच्छा, बंदर से इंसान भी हुआ, बंदर भी देख रहे हो, इंसान भी देख रहे हो, तो बीच का कहाँ गया? थोड़ा सा इतना छोटा सा पूंछ, इतना पूंछ, इतना पूंछ वाला, आधा बंदर जैसा दिखे, आधा इंसान जैसा दिखे, ऐसा कोई है क्या? तो वास्तव में हम सभी बंदर से मनुष्य नहीं बने हैं। आप देखो, हमारे संसार में जब स्वर्ग था, जब जन्नत था, अभी तो दोजक हो गया है, नरक हो गया है, जब जन्नत था, स्वर्ग था, हम सभी इंसान जब धन धान्य संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे, हम कैसे थे? कैसे थे? देखो, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। उनके सिर पे सोने का हीरे मोती लगे हुए हैं, जो मुकुट दिख रहे हो, ये संपन्नता की निशानी है, ये प्राचुर्यता की निशानी है। तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहा जाता है इसलिए। तो देखिए, जब लक्ष्मी नारायण थे, क्या मोटे मोटे थे? मोटे मोटे थे, दुबले पतले थे ना? दोनों भी नहीं, फिट थे ना, दुबले पतले कहेंगे ना मोटे कहेंगे। जब त्रेता युग भी आया, त्रेता युग में भी देखो कितने सुंदर है सबका शरीर, कितना हम सभी कितने फिट थे, है ना? नहीं, जब द्वापर युग आया और कलयुग आ गया, ये कलयुग के लक्ष्मी नारायण है, देख लो कैसे हो गए। तो ये कलयुगी लक्ष्मी नारायण है। अभी साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रमाण क्या है, अभी अभी की बात सुना रहा हूँ, सुनो। साइंटिस्ट और इतिहास की कहानी सिर्फ 2000 की है, 2000 साल की। 2000 साल से पहले क्या था इनको किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी दुनिया में पता नहीं है। आज महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में भी साइंटिस्ट लोगों का, ऐतिहासिककार लोगों का बहुत मत मतांतर है। कोई कहता है आज से 2000 साल पहले महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, कोई कहता नहीं 2500 साल पहले। एक आदमी का जन्म के बारे में भी 500 साल का डिफरेंस दिखा रहे हैं। हमारे पास जो कंक्रीट इतिहास है वो सिर्फ 2000 साल का है, उससे पहले और 500 साल का किसी गुफा में किसी ताम्र फलक मिला, उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसी के आधार से अंदाजा लगा रहे हैं 2500 साल का। 2500 साल पहले तो क्या था किसी को पता ही नहीं है, तो कौन कैसे सच बता सकता है? तो इसलिए इतिहासकार और साइंटिस्ट लोगों ने कल्पना जल्पना लगाते हैं। सुनो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कहते हैं कि आज से 4 मिलियन की 5 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा सूर्य, हमारे जो सूर्य है वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा, तो उसके माध्यकर्षण शक्ति से हमारे सूर्य का एक टुकड़ा अलग हो गया, और वो बड़ा सूर्य जब चला गया हमारे सूर्य के चारों तरफ से जो छोटा सा टुकड़ा था वो घूमते घूमते उसमें ग्रह उपग्रह बन गए, मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो नवग्रह बन गए, उनके उपग्रह भी बन गए और हमारा पृथ्वी उसमें से एक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो ऐसे नवग्रह है, तो उसमें से पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। कहते हैं आज से 4 मिलियन की 5 मिलियन साल पहले था ऐसा हुआ, किसने देखा तो नहीं। मैं कहूंगा आज से 4 साल की 5 साल पहले मैं कहीं गया था, दिल्ली गया था, आप कहेंगे हाँ गए होंगे डॉक्टर साहब। मैं कहूंगा कि 40 साल की 50 साल तो भी आप कह लेंगे हाँ गए होंगे, लेकिन 4 मिलियन की 5 मिलियन साल पहले कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं है बीच में। ये क्या है, अंदाजा नहीं तो कल्पना नहीं तो क्या है, किसने देखा था क्या। और कहते हैं वो सूरज के चारों तरफ से वो सारा घूमने लगे, धीरे धीरे ठंडा हो गया और हमारे पृथ्वी के समुद्र के किनारे में अचानक ही ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ये सब मिला के एक एमीबा एक कोशी प्राणी हो गई, और वो एक कोशी प्राणी बहुकोशी प्राणी हो गई, बहुकोशी प्राणी से फिर मछली हो गई, मछली से फिर मेंढक हो गया, मेंढक से फिर वो सारे मामालियन हो गए और फिर बंदर हो गया, बंदर से फिर इंसान हो गया। वाह कितने बड़े बात है, बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं आपको ऑक्सीजन कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बन देता हूँ, देखता हूँ कैसे एक एमीबा बना के दिखाओ, कोई बना सकता है। आजकल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक खून बना के दिखाओ तो कोई एक सेल भी बना नहीं सकते हैं, साइंटिस्ट लोग एक सेल भी नहीं बना सकते हैं, इन आदमी तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का भावार्थ है साइंटिस्ट लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं, कल्पना जल्पना लगा रहे हैं, वास्तव में बंदर से इंसान नहीं बना है। बंदर से इंसान बनता तो आज बंदर सब खत्म हो जाते, क्योंकि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, डार्विन एक ऐसे विकासवाद का वो एक हाइपोथेसिस लिखा था, उन्होंने लिखा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दुनिया में जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा बचेगा, बाकी मर जाएंगे। बहुत गर्मी हुई, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी कि 60 डिग्री 70 डिग्री हो गया, 45 डिग्री में मर जाते हैं लोग, 50 डिग्री में लू होता है तो मर जाते, 60-70 डिग्री अगर हो जाए तो क्या होगा। जो वो सन को विथस्टैंड कर पाया, झेल सकेगा वो जिएगा, नहीं तो बाकी तो मर ही जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको कहा जाता है। तो जो प्राणी पशु पंछी जानवर वो सब फिट यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, मर ही जाते हैं, जो झेल सकता है वो जिंदा रह सकता है। आज तक भी डायनासोर राइनासोर कितने, अभी मैं बता रहा था ये मोबाइल के रेडिएशन में ये जो छोटे छोटे घरेलू चिड़िया छोटे 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 करते थे घर में, कहाँ है, सब खलास ही हो गए, क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन ऐसा हुआ कि वो मर ही गए सब। तो ऐसे दुनिया में इतिहास में कितने पढ़ते हैं डायनासोर थे राइनासोर थे, आज खत्म है नहीं कोई। तो कहते हैं बंदर से इंसान हुआ, तो बंदर ये प्राकृतिक परिवेश को झेल नहीं सका इसलिए तो इंसान हुआ, तो फिर लेकिन अभी बंदर भी देख रहे हो इंसान भी देख रहे हो, दोनों कैसे होंगे। तो आज साइंटिस्ट मानते हैं कि ये गलत थ्योरी है, ऐसा नहीं है कोई बंदर से इंसान नहीं बना है, इंसान इंसान ही होके पैदा होता है। तो ये सब बातें कैसे हमारे पूर्वज ऐसे थे कौन थे आप कल सुनेंगे, आपको बताऊंगा कैसे हुए क्या हुए कहाँ आए से कहाँ से आए। तो बता रहा था कि सतयुग त्रेतायुग में तो हम फिट थे पूरा, देखो कितना सुंदर शरीर था हमारा, कितना एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल एकदम सब फिट थे, 33 करोड़ देवी देवता पूरा फिट थे भारत में। लेकिन जब कलयुग आया हम सभी ऐसे बन गए, कलयुगी लक्ष्मी नारायण बन गए। तो क्यों हम मोटे होते जा रहे हैं, इसका कारण है कि जब हमारे शरीर में चर्बी ज़्यादा जमा हो जाता है उसको मोटापा कहा जाता है, उसको ओबेसिटी कहा जाता है। शरीर में अगर चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है क्यों होता है, क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं मेहनत कम कर रहे हैं। अब जो खाते हो मेहनत करते हो तो हजम हो जाता है, फिर आपका शरीर का वजन सही रहता है। अगर आप खाते ज़्यादा हो इनकम करते हो ज़्यादा खर्च करते हो कम तो क्या होगा, इनकम करते हो ज़्यादा खर्च करते हो कम क्या होगा, जमा होगा। तो खाते हैं ज़्यादा और खर्च करते हैं कम, मेहनत करते हैं कम, तो वो सब चर्बी होके हमारे शरीर में जमा हो जाता है। तो एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये दोनों का जब इम्बेलेंस हो जाता है, हमारा शरीर स्थूलकाय हो जाता है, शरीर एक्स्ट्रा जमा हो जाता है चर्बी। सो ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, हमारे शरीर में जमा होते होते। डेली आप जो खाते हो, आप 200-400 कैलोरी डेली एक्स्ट्रा आपका जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, तो सालों तक कितने कैलोरी जमा हो जाएगा, कितने कैलोरी जमा हो जाता है जानते हो? 1 ग्राम चर्बी में 9.5 कैलोरी उसमें ऊर्जा होती है, 9.5 कैलोरी 1 ग्राम में। तो उसी हिसाब से हमारे शरीर में कितने ऊर्जा एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, उसी अनुसार फिर चर्बी जमा हो जाता है, सब चर्बी हो जाता है। जो एक्स्ट्रा खाते हो, मान लीजिए आप दिन में 5,000 खा लिए, खर्चा किया 1,000, कितना जमा हुआ? 4,000, महीने में कितना जमा हो जाएगा सोच लो। तो उसी अनुसार किलो जमा कैलोरी जमा होगा। अगर महीने में अगर 9,000 कैलोरी अगर होता है तो 1 किलो को कितना ग्राम है? 1,000 ग्राम है ना, 1 किलो को 1,000 ग्राम, तो 1,000 किलो कैलोरी में 9,000 कैलोरी में 1,000 ग्राम होता है, क्योंकि 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी है, तो 9,000 में 9 किलो कैलोरी। तो आपके जो कैलोरीज होता है वो कैलोरीज अनुसार आपके शरीर में फिर चर्बी वो जमा होता है। आप 1 किलो चर्बी जमा हुआ मैंने 9,000 कैलोरी आपके शरीर में डिपॉजिट है, 9,000 कैलोरी आपके शरीर में एक्स्ट्रा जमा है। मान लीजिए आप दिन में 100 रुपया कमाते हो लेकिन खर्चा करते हो 10 रुपया, 100 रुपया कमाया लेकिन 10 रुपया खर्चा किया, तो 90 रुपया कहाँ होगा, जमा होगा ना? नहीं। तो ऐसे जमा होते 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 साल भर कितना जमा हो जाएगा? ऐसे ही हम सारा दिन जितना खाते हैं वो काम कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो सब जमा होते 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 शरीर में फिर एकदम चर्बी होके जमा हो जाता है। तो दोनों का बैलेंस नहीं रहता है, हम क्या खाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, दोनों का जब बैलेंस नहीं रह जाता है तो फिर हमारा शरीर में चर्बी जमा हो जाता है। देखो नर्स बेचारी परेशान, उसकी कमर माप रही है तो फीता छोटा हो गया, क्या करेगी अभी। तो आजकल हम कितने मोटे होते जा रहे हैं सोचो, क्यों मोटे होते जा रहे हैं? देख रहे हो क्या देख रहे हैं? और हाथ में कितना पकड़े हैं देख लो, कितना कितना पकड़ के बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं खा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या खा गए कितना खा गए। तो इसलिए मैं आपको कल बता रहा था कि आप टीवी देखते देखते कभी नहीं खाना, काम करते करते कभी नहीं खाना। तो हम सभी का जीवन ऐसा हो गया है, घर में फ्री है बैठ जाओ टीवी के सामने, ऑन कर दो इडियट बॉक्स को, खाते रहो देखते रहो, बस यही जीवन है। तो आजकल लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, कहते हैं कि हम फिटनेस सेंटर में जाते हैं, जिमखाना में जाते हैं थोड़ा। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिकली देखा हूँ, मर्सिडीज कार ड्राइव करके आएंगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से, और आएंगे तो कोई सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, वो बगल में जो रेलवे स्टेशन में और एरोड्रोम में होता है एक्सकालेटर कहते हो, अब खड़े हो जाते तो ग्रर मशीन ऊपर ले जाता है, तो देखो सीढ़ी कोई चढ़ नहीं रहा है, उसमें ही खड़े होके जा रहे हैं। आप जा रहे हो आप एक्सरसाइज करने के लिए, अरे भाई सीढ़ी तो चढ़ो कम से कम। यहाँ भी मैं देख रहा था माताएं आती है वो लिफ्ट में, अरे भाई थोड़ा सा सीढ़ी तो चढ़ो, कौन सा 5 मंजिल चढ़ रहे हो जो आपको थक जाते हो, 1 मंजिल नहीं चढ़ सकते हो, सीढ़ी तो चढ़ो लिफ्ट के बदले, तो ही तो फिट रहोगे। हम सभी सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन कौन मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कौन मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कुत्ता को मॉर्निंग वॉक करा रहे हैं। तो आज हम सभी का जीवन देखो कैसा है, हम कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जीवन शैली हमारी। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देखो सोफा सेट में ऐसे पढ़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो कितने गोल मोटोल देखो, क्या देख रहे हो माताएं? एक हाथ में रिमोट कंट्रोल, दूसरे हाथ में कितना पॉपकॉर्न, और खुद भी पॉपकॉर्न बन गई। तो इतना खाएंगे तो क्या होगा, आप सोचो। तो आज हमारे बच्चे भी ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं। अरे मेरे भाई और बहनों, भूख लगी तो फ्रूट्स खाओ, उसमें बहुत अच्छा है, विटामिन्स भी है, रेसा भी है, आपको बहुत ताजगी लगेगी, फ्रूट्स हेल्दी है। आप गंद चीज़ें खाओगे, वेस्टर्न फूड देखो, चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, कुकीज, क्रैकर, ये सब गंद चीज़ें खाएंगे, क्या होगा? हाई कैलोरी भी है और इसमें ट्रांसफैट भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, सब प्रकार के प्रॉब्लम होगा। क्यों खाएं ये सब चीज़ें? बहुत सारे डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो कान खोल करके। न्यूट्रिशन अलग सब्जेक्ट है, उसका न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं, MD होते हैं, अलग होता है। हम जो मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत थोड़ा सा चैप्टर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, कोई उनका नॉलेज नहीं है डॉक्टर्स को मैक्सिमम। मैं कितने सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूँ, कितने किताब पढ़ा हूँ, मेरे पिछले इतने सालों का अनुभव है, मैं पेशेंट्स को डील करता हूँ, इसलिए मैं आपको इतना डाइट का मेरे पास तो कितने सारे हैं, मैं आपको बहुत सार रूप में सुनाया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, ये खा लो वो खा लो, बिल्कुल नहीं खाना। मेरे पास अभी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट होने के लिए आते हैं, जानते हो, आए दिन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट होने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज से ठीक हो ही नहीं रहा है। एक बॉम्बे से एक डॉक्टर आया था, उसका वीडियो रखा हूँ, आप सुनना चाहते हो सुना दूंगा। वो सर्जन खुद है, कहता था मैं एक सर्जरी करके आता था 4 समोसा खा जाता था, फिर जाके एक सर्जरी करके आता था 2 आइसक्रीम खा जाता, मुझे सुदबुद्धि नहीं था, जो मर्जी खा रहा हूँ। 98 किलो हो गया शुगर। फिर एक दिन हमारे माउंट आबू आया था तो शुगर चेक किया था 400 दिखाया उसको, उसका आप सुनना चाहते तो वीडियो सुना दूंगा। कहता था मैं ऐसा हालत हो गया कि बात मत पूछो, मैं एक सर्जरी करने के बाद थक जाता था, ऐसा मुर्दा जैसा जीवन हो गया था। मैं फिर रियलाइज किया, मैं छोड़ दिया, पूरा बंद कर दिया मुंह एकदम। तो अभी वो 70 किलो है, 98 किलो था, 70 किलो, अभी दिन में 10-10 सर्जरी करता है, फिट एकदम, उसका आप दिखा सकता हूँ। दवाई सब बंद हो गई, बिल्कुल बिना दवाई ठीक है, खुद सर्जन है। हमारे पास गायनकोलॉजिस्ट आते हैं, डेंटिस्ट आते हैं, कितने प्लास्टिक सर्जन आते हैं, सब डॉक्टर होके भी ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, आजकल इतना स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। आने वाले दिन में तो मुझे ऐसा लगता है जो राइट कान देखता है वो लेफ्ट कान बोलेगा कि वो फलाना डॉक्टर के पास जाओ, लेफ्ट देखता है, मैं राइट देखता हूँ, ऐसा भी हो जाएगा। तो लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए आजकल हमारे बच्चे ये सब गंद चीज़ें टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट देख के यही खाते हैं। माताएं कान खोल करके सुनो, बच्चे कुछ भी डिमांड करते हैं तो बिल्कुल नहीं मंगाना। ये सब आप पंपरिंग करते हो, खिलाते हो, फिर बच्चे बहुत कम उम्र में हार्ट की बीमारी हो जाती है। ये सब हाई कैलोरी फूड है, ये बाज़ार में जो मिलते हैं इसमें बहुत कैलोरी होते हैं, इसे खा के ही ऐसे हम मोटे होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है ये फास्ट फूड जंक फूड ही वास्तव में मोटापा का कारण है, ये WHO कहता है। ये सब गंद चीज़ें बच्चों को मत खिलाओ, आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे। सुरेश भाई, एक अगर केला का चिप्स मिलेगा तो लेके आना, इनको दिखाऊंगा कितने बाद में, केला का चिप्स 2-3 चिप्स लेके आना, दिखाऊंगा जला के। अभी नडियाद गया था, मुझे केला का चिप्स खाने के लिए दिए, तो मैं बोला तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। माता जी हंस रही है, देखा ना आपने, देखा। तो मैं बोला कि इसमें क्या होता है देख लो, एक केला का चिप्स जलाया, थप 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 50 बूंद तेल गिरा वहाँ से, और जलता रहा कितने समय तक जलता रहा। जब हम वेपर खाते हैं कितना खाते हैं, 2-3 खाते होंगे, कितना खाते हैं, पूरा पैकेट भर भर के। हमने कुछ नहीं खाया डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, फिर भी इतना मोटा, हवा पानी खा खा के मोटे हो जाते होंगे। तो क्या होता है आपको समझ नहीं है, तो ये सब बच्चों को बिल्कुल मत खिलाना, जितना हो सके वेजिटेबल ये सब खाओ, फ्रूट्स खाओ। तो दो प्रकार के मोटापा होता है, एक मोटापा एप्पल जैसा, एक मोटापा नाशपाती जैसा, पेयर जैसा। जो ये एप्पल जैसा मोटापा वो बड़ा खतरा है, जो पेट के इर्द गिर्द में चर्बी जमा हो जाता है वो बहुत खतरा है। जितनी बड़ी कमर उतनी छोटी उम्र, लंगर दी बेल्ट सटर दी लाइफ। हमारे पेट के इर्द गिर्द में अगर चर्बी जमा हो गई, जैसे एप्पल का बीज का हिस्सा मोटा होता है और पेयर जैसा होता है, देखना ऐसा कम पतली कमरी जैसा, कमर जैसे पतली हो गई ऐसा होता है। तो जिसकी कमर पतली है नीचे का हिस्सा मोटा है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ज़्यादा बीमारी नहीं होगी। लेकिन पेट के इर्द गिर्द में चर्बी जमा हो गया तो हो गया कल्याण, ये बड़ा डेंजरस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में मेजोरिटी ऐसे हैं, एप्पल जैसे हैं, पतले हाथ पांव ऐसे पतले दुबले होंगे लेकिन पेट देखोगे तो पूरा सेठ जैसा, वो सबसे बड़ा डेंजरस है। तो भारत में देखा गया है, आपका यहाँ सभी का कमर क्यों मापा गया, कल दिखाऊंगा कितने खाने पीने वाले हैं, तो आपके कमर कैसे है देख लेना। आपके कमर भाइयों की कमर अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो खतरा की घंटी बज गया, सोच लो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा कमर की साइज है तो खतरा ही खतरा है, आपके अंदर बहुत चर्बी जमा हो गया है, बहुत डेंजरस है। बहनों की 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो डेंजरस है, भाइयों के 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कमर, बहनों की 80 सेंटीमीटर से कमर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सुन रहे हैं। तो भारत में और एक चीज़ भी देखते हैं हम, सभी दुनिया में देखते हैं, उसको BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो भी हम निकाले हैं, वो मशीन में जो खड़े हुए ना उसमें BMI दिखाता है, मैं दिखाऊंगा। वास्तव में वो 25 के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन सभी का कितना ज़्यादा है अब देख लेना, माताओं का कितना ज़्यादा है देख लेना। तो BMI क्या होता है, हमारे वेट और हाइट के हिसाब से हम मेजर करते हैं, लेकिन BMI कभी कभी ठीक नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखो, ये दो भाई हैं, ये दो भाई का BMI निकल गया, दोनों का नॉर्मल दिखा रहा है 22.3, 25 से कम होता है तो नॉर्मल कहते हैं, तो दोनों का 22.3। लेकिन और एक मशीन है जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, उसमें ही आपका शरीर में कितना चर्बी है वो बताता है, चर्बी कितना है बताता है। तो उसमें जब डेक्सा स्कैन किया गया, देखा गया, ये पहला जो था उसका 9% चर्बी है, दूसरा तो 21% चर्बी है, कितना डिफरेंस है। BMI दोनों का समान है लेकिन चर्बी अपना शरीर के अंदर जिसका ज़्यादा है उसको मोटा कहेंगे। देखो ये दो भाई है, ये दोनों को देखने में उनका दोनों का BMI बहुत ज़्यादा है, 33.5, 25 के अंदर होना चाहिए, कितना ज़्यादा है। लेकिन ये पहला जो देख रहे हो उसको हम मोटू नहीं कहेंगे, क्यों, वो एक मजदूर है, खूब रस तगड़ी उठाता है, गाड़ी खींचता है, मजदूरी करता है, तो मसल्स ज़्यादा है उसके अंदर, चर्बी नहीं है। और दूसरा तो सेठ है, सारा दिन बैठा रहता है दुकान में, खाता रहता है घी, खाता रहता है बैठा रहता है, तो पेट इतना बड़ा हो गया, उसके शरीर में चर्बी ज़्यादा है। देखो इसके चर्बी 12% है, उसके चर्बी 31% है। तो ये दूसरा सेठ को मोटू कहेंगे, वो मोटू नहीं है। इसलिए BMI हमेशा सही नहीं है, आप शरीर में कितने चर्बी है वो इम्पोर्टेंट है। आपका वजन कितना है, आपका वेट अगर ज़्यादा हो गया तो, वेट ज़्यादा हो गया तो आपको हार्ट की बीमारी होगी, डायबिटीज़ होगा, स्ट्रोक होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, अनेक प्रकार के कैंसर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कितनी क्या क्या बीमारी आपको गिनती करा दूंगा। तो हमारा बॉडी वेट आइडियल होना चाहिए, अर्थात जितना होना चाहिए उतना है तो उसको आइडियल बॉडी वेट कहेंगे। वो अपना हाइट और वेट के अनुसार होता है, हाइट अनुसार होता है, हाइट के अनुसार, सेक्स के अनुसार होता है। देखो भाइयों का वेट कितना होना चाहिए, आपका हाइट जितना सेंटीमीटर है उससे 100 माइनस कर दो। मान लीजिए मेरा हाइट 6 फुट है, 6 फुट माना 1 फुट को 30 सेंटीमीटर, 6 फुट को कितना हुआ 180 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस कर दिया तो कितना बचा 80, तो 80 किलो होना चाहिए। आपका मान लीजिए हाइट 5 फुट है, 5 फुट को कितना सेंटीमीटर 150, 150, तो बहनों का 105 माइनस करना चाहिए, भाइयों का तो 100 माइनस करना चाहिए, बहनों का 105 माइनस करना चाहिए। तो अगर 150 से 105 माइनस कर दिया तो कितना रहा? 45 रहा, 45 किलो आ जाए। लेकिन आपको 5 किलो हम कंसेशन दे देते हैं, चलो 100 गिनती करो, 5 किलो थोड़ा कंसेशन दे देते हैं आपको। तो आप गिनती करो, आपको पता चलेगा आपका हाइट के अनुसार वेट कितना ज़्यादा है। कल दिखाऊंगा सब माताओं को, आप देख लेना, सभी 20-20 किलो 30-30 किलो इकट्ठा करके रखे हो, सभी माल ठाल, तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी। डायबिटीज़ का एक मेन कारण आपको बताया, ओबेसिटी। अगर आप शरीर का वेट बढ़ गया, चर्बी जमा हो गया, तो वो इंसुलिन को काम करने नहीं देता है। आज नहीं तो कल डायबिटीज़ होगा। आज अगर नहीं है तो आप बहुत लक्की हो, लेकिन जिस थोड़े दिन के बाद अगर हो गया ना, फिर जिंदगी भर रोते रहो। अभी भी 10 किलो अगर कम कर देते हो, आपकी सारी गोलियां बंद हो जाती है। मैं अभी एक भाई का आपको वीडियो सुना देता हूं, आप खुद समझ जाओगे। देखना चाहते हो, एक वीडियो देख लो। ये सुनो, पुणे से एक कपल आए थे, एक आईटी का प्रोफेसर है, उनकी मिसेज क्या कहती सुनो।
मेरा नाम दीपा मेघराजानी है और मैं मिस्टर मनोज मेघराजानी की वाइफ हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जब इनको डायबिटीज हुआ था तो मेरे को काफी टेंशन हो गया था कि क्या होगा, क्योंकि सभी डॉक्टर का ऐसा बोलना है कि एक बार अगर डायबिटीज शुरू हो जाए तो टेबलेट आपको लॉन्ग लाइफ लेना ही पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। हम लोग फिर पुणे का ट्रीटमेंट छोड़ के हमने टीवी में कार्यक्रम देखा डॉक्टर श्रीमंत साहू का, और हम ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने आए। वहाँ उन्होंने हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में कैसे बदलाव लाना है, ये भी सिखाया। हमने उनका पूरा फॉलोअप किया, मेडिटेशन, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और इसके बाद एवरी मंथ चेकअप। 3 इयर्स के बाद मेरे मिस्टर का डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और उनका जो स्टार्टिंग में वेट था वो करीब 89 के लगभग था, लेकिन आज उनका वेट करीब 70 kg है। तो जैसे जैसे वेट कम हुआ है, एक्सरसाइज और डाइट और मेडिटेशन और चेकअप फॉलो किया है, तो इनकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मैंने भी सोचा कि कहीं मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इनके साथ साथ मैंने भी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया और रेगुलर मैं भी एक्सरसाइज करने लगी। तो मेरा भी वेट इनके साथ साथ 6 kg ऑटोमेटिकली कम हुआ है। और इस बार ग्लोबल हॉस्पिटल में मैंने भी अपने चेकअप करवाए, मेरे सभी चेकअप जो है वो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। और अभी हम लोग जो है, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं घर में, मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है बाहर जाने का, तो मैं घर में बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ। इस एक्सरसाइज करने से मेरे पैरों का दर्द, मेरा शोल्डर पेन बिल्कुल खत्म हो गया है। और मैं थैंक यू दूंगी डॉक्टर जी का जो हमें मिले और हमारी लाइफस्टाइल को चेंज किया, और हमारे मेरे मिस्टर की जो डायबिटीज है वो बाय बाय हो गई है। और मैं कोशिश करूंगी कि जो और लोग हैं उनको भी इनका फायदा हो और वो भी डॉक्टर श्रीमंत के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाए। थैंक यू।
मेरे पास तो कितने लोगों के एक्सपीरियंस है, क्या क्या आप सुनाऊँ एक एक का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ से प्रण करके जाओ कि मुझे 10 किलो तो वेट कम करना है 3 महीने में। पिछले साल जितने भी भाई बहन आए थे, पूछ लेना, हमारे बहुत सारे गुजरात से भाई बहन आए थे, मेजोरिटी लोगों का 3 महीने में 10-10 किलो कम हो गया, गोली आधी से व्याधि होगी। मैं भावनगर गया था, वहाँ एक माता कहती है मैं 15 किलो कम की हूँ, 5 महीने में 15 किलो कम की, मेरी सारी दवाई बंद हो गई। कितने जो आप सिंसियरली करोगे तो आपका वजन नहीं घटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस दिन आपका वजन 10 किलो भी कम हो गया, आप देखना आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा महसूस करेंगे, सारी दवाइयाँ कम हो जाएगी। अगर सारा ज़िंदगी आपको इतने इतने दवाई खानी है तो खाओ, आपकी चॉइस है। अगर आप फिट होके एकदम अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, एकदम फिट रहोगे, दवाई भी नहीं खाना चाहते तो वजन घटाओ। तो कैसे घटेगा सुनो, आपको मैं आगे बताता हूँ। तो डायबिटीज में देखो, एक तो मोटा हो जाना भी ठीक नहीं है, एकदम फूंक देने से भी उड़ जाओ ऐसा भी होना भी ठीक नहीं है। अंडरवेट होना भी ठीक नहीं है, ओवरवेट होना भी ठीक नहीं है, हमें नॉर्मल बॉडी वेट कैसे हो देखना है। हमारे शरीर में चर्बी, अगर माताओं के शरीर में चर्बी 20-30% है तो नॉर्मल है, भाइयों के शरीर में चर्बी 10-20% है तो नॉर्मल है। लेकिन हमारे शरीर में दो तरह की चर्बी होती है, एक तो हमारे चमड़ी के नीचे जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, लेकिन एक होता है हमारे पेट के अंदर। पेट के अंदर जो होता है वो विसेरल फैट है, वो सबसे बड़ा खतरा है। पेट के अंदर जो विसेरल फैट होता है वही आज सबसे बड़ा डेंजरस है, वही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर का कारण है। तो कुछ लोग कहते हैं ये तो डॉक्टर साहब ये हम खाने पीने वाले घर के हैं ना, इसलिए ऐसे हैं। तो ये समृद्धि की निशानी है क्या, ये समृद्धि की निशानी है क्या? वास्तव में ये पेट में फिर है क्या, क्या है पेट में बोलो? ये पेट में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट की बीमारी है। अगर चर्बी जमा हो गया तो इसमें डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट अटैक होगा, सब बीमारी आएगी एक के पीछे एक। तो पेट के अंदर चर्बी जमा हो जाना बड़ा डेंजरस है। पहले हम ये चर्बी को ये चर्बी तो है समझते थे, लेकिन नहीं, ये चर्बी एक एंडोक्राइन ऑर्गान जैसा कितने क्या क्या ये सब सिक्रीट करता है। अब देखना ये साइटोकाइन्स, रेजिस्टिन, एडिपोनेक्टिन, फिस्फेटिन, ये सब चीज़ें, एगोटी, ये सब चीज़ें जमा सिक्रीट करती जो सारी बीमारियों का जड़ है। पहले ज़माने में गली गली में गाँव में हाथी लेके आते थे, और हाथी जब लेके आते थे हाथी के गले में एक घंटी बांधते थे, और हम दोपहर को सोते थे तो घंटी के आवाज़ से पता चलता था कि हमारे इलाका में, हमारे एरिया में हाथी आ रहा है, ठीक है ना। नहीं, सो द बेल साउंड इज हर्ड फर्स्ट, द एलिफेंट कम्स नेक्स्ट। पहले वो बेल की घंटी सुनाई देती थी, फिर हाथी आता था बाद में, है ना। नहीं, इसी प्रकार द बेली कम्स फर्स्ट, द हार्ट अटैक कम्स नेक्स्ट। तो पहले आपका पेट निकलेगा, फिर हार्ट अटैक आएगा। समझा, समझ में आया माताओं को? पहले हाथी के वो घंटी आवाज़ आता था, फिर हाथी आता। इस प्रकार पहले पेट आएगा, फिर उसके बाद हार्ट अटैक आएगा। तो आपको पता है कि डायबिटीज़ हो गया माना, आप समझ जाओ आपको एक बार हार्ट अटैक हो गया। एक बार किसी को हार्ट अटैक हो गया तो जैसे उनकी स्थिति होती है, आपको डायबिटीज़ हो गया तो समझ जाओ आपको एक बार हार्ट अटैक हो ही गया है। तो बहुत सावधानी से आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा डेंजरस है। देख रहे हो, सभी देख रहे हो, ये पेट है कि मटका है? जब पेट बन जाता है मटका, स्वास्थ्य को लगता है झटका। तो जब आपका कमर साइज बड़ी हो जाती है, उम्र भी कम हो जाती है। तो लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, जिसका बेल्ट जितना लंबा है उसकी आयु उतनी कम है। इसलिए बेल्ट लंबा नहीं करना है, पेट की साइज कम करना है। जो फिट है वो फैट नहीं, जो फैट है वो फिट नहीं, दोनों साथ साथ कभी जोड़ी नहीं हो सकते। जो फिट होगा वो फिट नहीं होगा, जो फिट होगा वो फिट नहीं होगा। तो आप फिट हो कि फिट हो देख लो, क्या हो, क्या हो देख लो। तो इसलिए सोच लो, तो हमारा शरीर तो ऐसा होना चाहिए, और बॉडी शुड बी लुमिनस, हमारे शकल, सूरत, चेहरा ऐसा होना चाहिए हमको देख के सब खुश हो जाए। लेकिन आजकल हम क्या बन गए हैं, वॉल्यूमिनस। हम जो खाते हैं, जैसा खाते हैं ऐसा ही बन जाते हैं, हमारा शरीर ऐसा नहीं बन जाता है। तो हम जो खाते हैं उसी अनुसार ही हमारा शरीर बनता है। एक लेडी आई थी 120 किलो की, मैं पूछा सवेरे नाश्ता क्या करते हो, नहीं कुछ करती हूँ डॉक्टर साहब। लंच क्या करते हो, नहीं लंच भी नहीं करते। डिनर क्या करते हो, डिनर भी नहीं करते। क्या करते हो, 20 बोतल कोका कोला पी जाती हूँ। तो कोका कोला जैसा ऐसी हालत, सब बीमारियाँ। तो इसलिए हम क्या खाते हैं उसके अनुरूप हमारा शरीर बनता है। आज हमारे पास तो इतने सारी किताबें पढ़ पढ़ के हम पंडित बन चुके हैं, लेकिन वो सारा क्या काम का है जब हमारा शरीर ठीक नहीं है। तो नॉलेज है तो उसको जीवन में इम्प्लीमेंट तो करें, हम फिट तो बने। तो आज देखो इतने सारे खाने पीने का चीज मिलता है, शहर में जाओ बिन सीजन में भी आपको सब कुछ मिलेगा। आजकल हाइब्रिड का सब मिलता है, आम का किसी सीजन में ढूंढो आप आम मिल जाएगा, और जो चीज़ मांगो जब मांगो मार्केट में सब अवेलेबल है। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और घर घर में टेलीविजन, 24 घंटा टेलीविजन, सासू का चैनल अलग, बहू का चैनल अलग, बच्चों का चैनल अलग, सब घर में तीन तीन चार चार टीवी होंगे, सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहना, क्या हाल होगा। तो इसलिए हमारे बच्चे देखो आजकल कैसे हो गए हैं, हमारे बच्चे भी बैठ के क्या कर रहे हैं, देखो कच्छा भी पहनना नहीं आया है, लैपटॉप चला रहा है। तो इसलिए, और माताओं को तो सबसे बड़ी सुविधा हो गई, सबके घर में वॉशिंग मशीन, जिसके घर में वॉशिंग मशीन है बताओ, थोड़ा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वाह बधाई हो आपको। पहले जमाने में एक एक माता कितनी मेहनत करती थी, मैं देखता था एक एक माता इतनी मेहनत करती थी, बात मत पूछो। कि आप देखना, बचपन में मैं देखता था माताएं सब जाते थे जंगल में, जाके लकड़ी लेके आते थे सिर पे ढो ढो के, फिर जाके तालाब से, कुआं, नदी से, कुआं से पानी उठा उठा के, एक गागर इधर उठा उठा के लेके आते थे, घर में कपड़ा सारे सटका मार मार के सफाई करते थे तालाब में जाके, फिर मसाला पीसते थे, चक्की पीसते थे, दही बिलोते थे, क्या क्या नहीं करते थे, एक एक माता पूरा कितनी मेहनत करती थी। आजकल बटन दबाओ घर हो गया सब, तो इसलिए सब बैठ के टेलीविजन देखते रहो, फिर मोटे हो जाएंगे। पहले लोग चल चल के कितना दूर जाते थे सामान उठा उठा के, आजकल इतना दूर के नहीं, घर क्या होगा फिर। तो इसलिए सबके माताओं को सबसे ज्यादा सुविधा हो गई, इसलिए मैं बता रहा था बहुत ही खतरा हो गया है, आपके शरीर में चर्बी जमा हो गया तो कितनी बीमारियां, देखो शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं रह जाता जिसमें बीमारी नहीं होती है, सारे शरीर को असर करता है आपके। देखो सबसे पहले तो डिप्रेशन होगा, जो मोटे हो जाते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमेशा ऐसे मूड उनका खराब रहता है, लोग उनको देख के हंसते हैं, और ही उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, और आपके कमर में यहाँ दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, और आपके कमर में ये दर्द होगा, फिर घुटना घिस जाएगा, तो क्या हाल होता है आप सभी जानते हो। आप शरीर का वजन 100-100 किलो 90-90 किलो ढो ढो के घुटना बेचारा घिस जाएगा कि नहीं, और जब घुटना घिस जाता है फिर आप जाके लाखों रुपया देके घुटना चेंज कराओगे। हमारे हॉस्पिटल में कोई हर महीना हम 10-15 लोगों का घुटना चेंज करते हैं, लाखों रुपया खर्च करके, एक तो खाओ ज़्यादा, चर्बी ज़्यादा जमा हो जाए, फिर लाखों रुपया देके घुटना चेंज करो। हमारे हॉस्पिटल में एंट्री होते ही मैं देखते ही समझ जाता हूँ क्या बीमारी है। कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, जिसके घुटने घिस गए ना वो चलता है ना, अब देखना सारा शरीर हिलेगा लेकिन घुटना नहीं हिलेगा, ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा घुटना नहीं हिलेगा। तो वो देख के चलते हुए देखते सब हॉस्पिटल में एंट्री होते हुए पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है। तो घुटना घिस जाएगा, गाउट हो जाएगा, फिर आपके वेरिकोज वेन हो जाएगा, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, स्लीप एपनिया होगा। क्या मतलब, सुन रहे हो, सीधा बैठो, सभी सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, आराम पसंद नहीं राम पसंद बनो, सीधा बैठो। स्लीप एपनिया होता है, क्या मतलब, आप देखना जो मोटे लोग होते हैं ना, जो थोड़े से मोटे होते हैं, सोने के बाद देखना खर्राटा कैसा जोर से शुरू हो जाता है। पतले दुबले लोग कम खर्राटा मारते हैं, जो मोटे लोग होते हैं बहुत ज्यादा खर्राटा मारते हैं, उसके बगल वाला का नींद हराम, सो नहीं पाता है। क्यों होता है ऐसा, ये गला इतना मोटा है ना, जब आप सो जाते हो रिलैक्स हो जाता है, वो जवान पीछे चला जाता है, जवान पीछे चला जाता है तो रास्ता सांस की नली अटक जाता है, तो इसलिए आपको खर्राटा जोर से आवाज आता है। लेकिन जो बहुत मोटे हो जाते हैं ना, उनका जवान एकदम पीछे चला जाता है तो वो पूरा बंद हो जाता है रास्ता, सांस की नली बंद हो जाता है, फिर क्या होता है, देखो अभी बैठे बैठे जागो, सोना नहीं, अभी सोने का वक्त नहीं है। तो देखो क्या होता है, आप देखना मोटे आदमी जैसे ऐसे सीधा सोते हैं ना, थोड़ा सा सांस लेते रहेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, थोड़े समय के बाद फिर आप देखना। तो ऐसे इसको कहते हैं स्लीप एपनिया, जिनको ऐसा होता है ना उनको हार्ट अटैक ज्यादा होता है, ये बीमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा होता है तो उसको ऐसे करवट करके सुलाओ, तो ऐसा ऐसा सोते हो ना जवान पीछे, जीभ पीछे चला जाता है, ऐसा करवट सोएंगे तो कम होगा। लेकिन किसी कोई कॉर्बेट ऐसे होता है कब ऐसे सीधा हो जाता है उसको थोड़ी पता चलता है। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, एक टावल को ऐसे बांध देना, मफलर जैसे बांधते हो ना ऐसे बांध देना अच्छी तरह से, ऐसे बांध के सोएंगे तो जुबान पीछे नहीं जाएगा। आजकल सर्जरी भी कराते हैं तो जो मोटे होते हैं इतने बीमारियां होती है, इतने बीमारियां बात मत पूछो। इसलिए मेरे भाई और बहनों देखो, आप मोटे होंगे तो स्ट्रोक होगा, ब्रेन फट जाता है, नस पैरालिसिस हो जाएगा, मोटे होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मोटे होंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, साइकेट्रिक डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, मोटे होंगे तो कैंसर होगा, मोटे होंगे तो हार्ट की बीमारी होगी, आप कोई भी काम इतना एफिशिएंटली कर नहीं पाएंगे, आपके डायबिटीज हो जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर में पथरी जमा हो जाएगी और घुटने घिस जाएगा, बताया ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी, घुटने घिस जाएगा, कितने बीमारियां आपको लिस्ट बताऊं, देखो सुनो, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की बीमारी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी, एसिड पेप्टिक डिजीज, टू मच एसिडिटी होगा, रात को नींद नहीं आएगी, स्लीप एपनिया होगा, बताया जैसे किडनी डिजीज होगी, लीवर डिजीज होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, कमर में दर्द होगा, प्रेगनेंसी हो गई, मोटी महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं नाक के दम हो जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, एकदम बहुत मुश्किल होता है, कोई सर्जरी करा तो सर्जर भी नाक के दम और बेहोश करने वाला भी नाक के दम, बहुत मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे काम कर थोड़ा सा काम करके थक जाएंगे, और मोटा आदमी आप देखना बातें करते करते बैठे बैठे भी बातें करते करते भी, कुछ लोग तो चलते चलते भी सो जाते हैं, उसको स्लीप सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। तो और काम कर नहीं पाएंगे इतना ठीक से, और सबसे इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि जो भी देखते हैं उनको सब देखते हैं कैसे नज़र से देखते हैं। आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र से एक फैमिली आए थे, हस्बैंड वाइफ और तीन बच्चियां उनकी, सब लड़कियां थी, टीन एजर थी, एक 19 साल का, एक 20 साल का, एक 21 साल का, किसी की शादी नहीं हुई क्योंकि सब 120 किलो 115 किलो, माँ बाप भी ऐसे और बच्चे भी ऐसे। तो मैं उनको सबको वहाँ हॉस्पिटल में रखा, उनको खाना पीना दे के 10 दिन में लगभग 6-7 किलो कम किए सभी। तो मैं बोला घर में मैं जो सिखा रहा हूँ ऐसे खाना पीना एक सही करोगे तो आप 4-6 महीने में 10-20 किलो कम हो जाएगा, तो देखना कितना अच्छा हो जाएगा। कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी बच्चियाँ ये दरवाजा खोल के कभी रास्ते में नहीं जाते, एक्सरसाइज क्या करेंगे, वो घर घर में अंदर ही रहते हैं, खाली टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते, बाहर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हैं? तो इनको देख के सब लोग हंसते हैं इसलिए वो घर बाहर नहीं जाते। तो जो बहुत मोटे हो जाते हैं उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, इसलिए कितनी सारी बातें हैं, आत्मग्लानी होती है। तो देखो 10 किलो भी वेट कम कर दोगे ना आपको कितना फायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, कितना फायदा होगा सोच नहीं सकते हो। इसलिए मेरे माताएं जागो, भाई लोग जागो, बिल्कुल यहाँ आप मेजोरिटी सब देखना, यहाँ कोई बिरला कोई नॉर्मल है, सबका वेट ज़्यादा है, और ये आपके हाथ में ही आपका वेट है। आप मुझे हमारे सुरेश भाई को पूछो, मुझे जब से देखे हैं मेरा वेट बढ़ा है तो पता है 30 साल में मैं 1 किलो भी मेरा नहीं बढ़ा है, 30 साल में जैसे आया था मैं जैसा था ऐसे ही हूँ, अभी तक भी सेम, 1 किलो आधा किलो इधर उधर होता है, बाकी वेट सेम है। तो आपके मुट्ठी में है, आप चाहो तो हो सकता है, तो वेट खाली नॉर्मल करो देखना कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए बताया मोटापा एक ग्लोबल सुनामी है, आजकल हमारे बच्चे कैसे मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी माताएं पंपरिंग करके बटर खा मक्खन खा ये खा वो खा, मेरा बट्टा थोड़ा गोल मोटल है तो मेरा बच्चा चप्पी चप्पी हुआ, हेल्दी है, हेल्दी नहीं है, उसको सत्यानाश कर रहे हो, उसका सत्यानाश कर रहे हो। आजकल हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि बात मत पूछो, खटिया में पड़े रहते हैं, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि मैं खटिया से बाहर आ गया हूँ और क्या चाहते हो मेरे से, तो खेलकूद करना नहीं कुछ नहीं है, इट इज़ ए थ्रीट टू द सोसाइटी। देखो कैसे 9 साल का बच्चा देखो कितना क्या क्या खा रहा है, कितना हालत कैसा है, और ये देखो हमारे भारत का कैसा पहलवान, कैसा हालत है देखो 5-6 साल में। तो बच्चे याद रखो, बचपन में कोई मोटा हो गया ना बड़े होके कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं, कितना भी कुछ कर लो वो कभी स्लिम नहीं हो सकता है। तो बचपन में माताएं बच्चों को भाग दौड़ करके पतले दुबले रखो, बच्चे अगर मोटे हो गए ना डेंजरस, देखना जिंदगी भर आपको कोसते रहेंगे, जिंदगी भर आप रोते रहोगे, इसलिए बच्चों को गोल मोटल नहीं करना बिल्कुल। सो फार साइट एंड फोर साइट विल प्रिवेंट डायबिटीज एंड टेस्ट, योर वेट इंडिकेट्स योर हेल्थ, आपका वेट कितना है वो आपका हेल्थ इंडिकेट करता है, आप अगर ज़्यादा वेट हो आज से ही सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, देखना रोते रहोगे। इसके इलाज क्या है? बहुत लोग आजकल सर्जरी कराते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी, लाखों रुपया देना पड़ता है। आपका लेप्रोस्कोप से आपका पेट को स्टेपलर कर देते, काट देते, छोटा कर देते, इतना खाएंगे तो पेट भर जाएगा, तो वो बहुत डेंजरस भी है और लाखों रुपया भी जाता है, कभी जान भी जाता है। क्यों खर्चा करें? एक जयपुर से मैं ट्रेन में जा रहा था तो फोन आता रहता है, तो एक फैमिली जा रहे थे इतने मोटे मोटे सब, तो फोन आ रहा था कि मैं तो लोगों तो समझ जाते हैं मैं शुगर के बारे में बताता हूँ, इंसुलिन इतना लो, तो मुझे पूछती है एक इतनी मोटी लेडी, कहती है डॉक्टर आप डॉक्टर हो क्या? मैं बोला हाँ। तो आप डायबिटीज़ डॉक्टर हो? मैं बोला हाँ। कि कहते हैं मुझे डायबिटीज़ है, मेरा शुगर तो कभी कम नहीं होता। जयपुर में एक स्कूल की प्रिंसिपल, तो कहते हैं मेरा तो कभी कम नहीं होता। मैं बोला कैसे कम नहीं हो सकता है, 100% हमारे हॉस्पिटल आओ देखता हूँ किसका कंट्रोल नहीं होगा, 100% मैं कंट्रोल करके दूंगा। तो वो फिर आई, आई तो थी 110-115 किलो की, तो उनकी सारी दवाई फवाई चेंज करके मैं फिर सही दवाई दिया उसको, एक्सरसाइज करा के, खाना पीना परहेज करके ठीक कर दिया। मैं बोला ऐसे ही करते रहोगे तो आपका वेट कम होगा, आप देखना 6 महीने में ठीक हो जाओगे। गई, किसी ने उसको बोला कि तू बैरिएट्रिक सर्जरी करा दे, जाके 1.5 लाख रुपया खर्च करके सर्जरी करा दी। तो पेट को इतना छोटा कर देते हैं, एकदम उसको टांका लगा के छोटा कर देते हैं, तो इतना खाने से भी पेट भर जाएगा। 6 महीने में उसका 40-50 किलो कम हो गया, ऐसी हो गई, उसका सब दवाई कम हो जाएगी। नेचुरली आपका चर्बी कम हो जाता है तो आपकी दवाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उसके जो इतने मोटी थी इतने पतले हो गए, ऐसा ऐसा चमड़ी ऐसे, ये चमड़ी ऐसे, पूरा एकदम पूरा 50 साल की उम्र की थी एक 80 साल की बुढ़िया जैसे हो गई। कहते डॉक्टर साहब मैं खा नहीं पाती हूँ, खाली पानी पी पी के, सूप पी पी के, दाल पानी पी पी के रह रहे हूँ, मेरा तो जीना हराम हो गया। मतलब कि आओ देखते हैं, देखा तो मैं पहचान भी नहीं सका। तो लाखों रुपया खर्च किया और पेट को काट दिया, छोटा कर दिया, और पानी पी पी के जिंदगी भर। मैं बोला कि वही तो करना था आपको, कि शुरू से थोड़ा जवान कम करके, कम खाते तो आप ऐसे हो जाते, और ऐसा हालत भी नहीं होती। तो इसलिए सर्जरी वर्जरी नहीं करानी है आपको, करानी है तो एक अच्छी सर्जरी अभी नई आई है जो हमारे हॉस्पिटल में करते हैं। क्या करते हैं जानते हो? पेट में एक गुब्बारा छोड़ देते हैं, एक पेट में एक गुब्बारा पूरा फुला के छोड़ देते हैं। तो इतना खाओगे तो पेट में गुब्बारा है, तो इतना खाने से पेट भर जाएगा, और जब चाहो गुब्बारा निकाल भी देते हैं हम, गुब्बारा रख देते हैं ऐसे, 6 महीना आप खा ही नहीं सकते, इतना खाने के बाद पेट भर जाएगा, फिर आप पतले दुबले हो जाओगे तो वो गुब्बारा निकाल देंगे। लेकिन पेट को काट के टांका बांध के करोगे तो फिर तो दोबारा नहीं कर सकते हो ना, इसलिए हम क्या करते हैं अंदर एक गुब्बारा छोड़ देते हैं। गुब्बारा इतना बड़ा गुब्बारा अंदर पेट में भरा पड़ा है, तो आपको लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है, इतना खाओगे तो भी पेट भर जाएगा, खा ही नहीं सकते हो। तो हम हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, किसी को अगर मेहनत करना नहीं चाहते हो, गुब्बारा पेट में रखना है तो आ जाओ, गुब्बारा डाल देंगे पेट में। नहीं नहीं आधा घंटे का ओपीडी सर्जरी है, कुछ भी करना नहीं, काट कुट नहीं है, कुछ काट छाट नहीं, कुछ नहीं है, अंदर डाल देते हैं और पूरा जब चाहो निकाल भी सकते हो। लेकिन महंगा है ये, तो विदेशी आइटम है सारा, अला के रखना पड़ता है क्योंकि अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे सहज तरीका ये है, लेकिन वो लाखों रुपये वो भी तो खर्च होता है। क्यों खर्च करना है? जो एक्सरसाइज में सिखाता हूँ, खान पान थोड़ा सा परहेज रखो। देखो कई कुछ लोग कहते डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दो ना, कोई दवाई लिख दो ना। ये भाई तो कहाँ गए, इधर तो सूरत का भाई हमारा, कहाँ गए हो अभी देखा था? कहते दवाई खाओ। अरे दवाई खा के कोई पतला दुबला होगा क्या? सबसे बढ़िया है आपका खान पान ठीक संभालो, क्या खाना है, तेल घी ना के बराबर कर दो घर में जाके। सबके घर में 4-4 गुना तेल घी ज़्यादा यूज हो रहा है, 4-4 गुना, और मेहनत नहीं, बैठे रहो तो कैसे वजन कम होगा? दवाई खा के कोई ठीक हो गए? दवाई का कितना साइड इफेक्ट होता है आपको पता नहीं। आज तक मोटापा घटाने के लिए कितनी दवाई बन चुकी है और दवाई बैंड हो चुकी है क्योंकि साइड इफेक्ट होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप खान पान और अपना लाइफस्टाइल को चेंज करो, एक्सरसाइज करो। मैं जो एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ सबसे सहज एक्सरसाइज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही एक्सरसाइज करो और खान पान ठीक करो, देखना पूरा आपका वजन नहीं घटेगा तो बताओ। सो टू लेसन दाई मील्स टू लेंथन दाई लाइफ, अगर आप खान पान थोड़ा कम खाओगे तो दीर्घायु होंगे, ज़्यादा खाएंगे मोटे होंगे, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, पैरालिसिस होगा। जो मोटा व्यक्ति है जिंदा होते हुए भी रोता है, हाय हाय करता है, और मरने के बाद भी लोग गालियां देते हैं, क्यों क्यों? उसको शमशान घाट में लेते समय दान निकल जाएगा सबका, तो मरने के बाद भी गाली खाएंगे। इसलिए क्यों मोटा होना है, फिट रहना है। तो आप एक काम करो, सिर्फ खाली अपना वजन 10 किलो घटाओ 3-4 महीने में, देखना आपकी सारी दवाई कम नहीं हो जाएगी तो कहना, ठीक है? ओके, सो द एपिडेमिक ऑफ डाइबेसिटी इज ए सीरियस हेल्थ थ्रेट फॉर द सोसाइटी। आज डायबिटीज और मोटापा, ये दोनों इसको मिला के डाइबेसिटी कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है, तो इसलिए हम सभी थोड़ा सा इसके लिए सावधानी रखें, ठीक है? ओके,